बैठे थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, सुनते हैं कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर पिता की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि यूहन्ना हमें बताता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। मेरे मित्रों, इस पत्री के अंदर हम प्रेम की बातों को देख रहे हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सुनना चाहते हैं, आप उनके मन और दिलों को खोल दें, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दें, ताकि आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो निराश, परेशान और चिंता में हैं। प्रभु जी, आप उनकी भी सहायता करें, उनकी सुधि ले, ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए। आज के वचन पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम लोग देख रहे हैं जहां पर यूहन्ना कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि यही वह सुसमाचार है जो आरंभिक है। प्रभु यीशु ने यही कहा था और उनके शिष्यों ने भी यही शिक्षा दी है। भाइयों से प्रेम रखना इस बात का प्रमाण है कि हम मृत्यु को पार करके जीवन में पहुंचे हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। जो अपने भाई विश्वासियों से बैर रखता है वह हत्यारा है। प्रेम करना हमने प्रभु यीशु से सीखा है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। जी हां, हमें भी उस उच्च स्तर तक पहुंचना है जहां हम अपने विश्वासी भाइयों के लिए प्राण देने के योग्य हों। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पहला यूहन्ना की पत्री 3:17 को पढ़ें। पहला यूहन्ना 3:17 में लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। यूहन्ना कहता है कि प्रेम भावना नहीं, कार्य है। याकूब भी इस विषय में अपनी पत्री में बहुत कुछ लिखता है। याकूब के पत्री 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। यदि आपके पास कोई भाई किसी आवश्यकता को लेकर आए और आप कहें मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो क्या हमारा प्रेम कार्यकारी है? सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बातों में एक यह है कि सांसारिक आशीषें पाने के बाद मसीह के लिए अपनी संपत्ति काम में ना लें। मेरे प्रियो, घरेलू उदाहरण है कि प्रेम रसोई में प्रकट होता है। पुरुष काम पर जाता है तो कहता है, मैं काम पर जा रहा हूं, मुझे अपने बीवी बच्चे पालने हैं। आप उससे कहें, मैं तो उनकी चिंता नहीं करता भैया, मैं उनके लिए काम करके अपनी जान थोड़े ही दूंगा, मैं मूर्ख नहीं हूं। वह कहेगा, मैं उनसे प्रेम करता हूं। यदि आप उसकी रसोई में जाएं, तो देखेंगे कि उसकी पत्नी सुबह 5 बजे से काम में लगी हुई है, उसका हाथ भी गर्म तवे से जल गया है। जब वह शाम को घर लौटता है तो वह थक कर चूर हो गई है, परंतु वह फिर भी अपने बच्चों की देखरेख में लगी हुई है। यदि आप उससे कहेंगे, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी चिंता नहीं करता, परंतु वह कहती है, यह मेरा पति है, मैं इससे प्रेम करती हूं। मेरे प्रियो, पति पत्नी में तो ऐसा प्रेम देखने को मिल सकता है, परंतु विश्वासियों में, जी हां, विश्वासियों में भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। प्रेम को कार्य से प्रकट होना है। यदि प्रेम कर्मों से प्रकट ना हो तो वह पाखंड है, घमंड है, दिखावा है। प्रेम शब्दों से नहीं कर्मों से प्रकट होना है। सच्चा विश्वास सिर का और मुंह का नहीं, मन का होता है। यूहन्ना स्पष्ट कहता है कि यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो प्रेम प्रकट करेंगे। 1 यूहन्ना 3:18 में लिखा हुआ है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम विश्वासियों से आत्मत्याग के प्रेम की अपेक्षा की जाती है। आवश्यक नहीं कि हम अपनी जान दें, परंतु आवश्यक है कि हम अपना संसाधन काम में लें। मसीही धर्म प्रेम का संबंध है जो एक दूसरे को प्रेम से जोड़ता है। 1 यूहन्ना 3:19 में लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। यदि हमारा जीवन यूहन्ना द्वारा व्यक्त इन बातों को प्रकट करता है तो हमें परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना में उपस्थित होने पर आश्वासन प्राप्त होता है। यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर हमारा लज्जित होना अति संभव है। जी हां, हम प्रायः प्रभु यीशु के पुनः आगमन की बातें करते हैं, परंतु करते कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु की उपस्थिति में आना अति भयानक होगा, क्योंकि प्रभु यीशु फल देखना चाहेगा। आप क्या करते रहे हैं? अब तक आप क्या कर रहे हैं? क्या उसके समक्ष आपके पास फल होंगे? यूहन्ना 14:16 में प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी एक आज्ञा है कि हम पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार सुनाएं। क्या आप इस काम में व्यस्त हैं? क्या आप ऐसा काम करते हैं जिससे प्रकट हो कि आप परमेश्वर की संतान हैं? मुझे याद है जब मैं छोटा था तब वहां के लोगों में कैसा प्रेम था। यदि कोई बीमार होता था तो सब पड़ोसी उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते थे। मैं जानता हूं कि आज के नए नए तरीके हैं, परंतु मैं उसी युग में लौट जाना चाहता हूं जब पड़ोसी एक दूसरे में रुचि रखते थे। आज हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह आवश्यकता ग्रस्त मनुष्यों की सुधि ले। आज विश्वासी प्रभु यीशु के चिंता विषयों में सहकर्मी नहीं होते हैं। परंतु मेरे मित्रों, हम यह ना भूलें कि हमें एक दिन प्रभु यीशु को लेखा देना होगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यहां पर लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और चाहें आप गरीब हों या धनवान, अपने संसाधनों द्वारा परमेश्वर के वचन के प्रसारण में सहकर्मी हैं, तो परमेश्वर आपके मन में विश्वास उत्पन्न करेगा कि आप उसकी इच्छा में हैं और आप वही काम करेंगे जो वह चाहता है। इस प्रकार आपको उसके समक्ष प्रार्थना में और उसके आगमन के दिन उसके समक्ष खड़े होने में ढाढ़स होगा। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4:8 में पौलुस का यह आश्वासन प्रकट है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। पौलुस को इसका विश्वास था कि उसके लिए एक मुकुट है, परंतु आपका विश्वास क्या है? पहला यूहन्ना 3:20 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर की संतान को यह आश्वासन प्राप्त है, परंतु यदि हम वह काम न करें जो हमें करना है, तब इसका अर्थ क्या यह है कि हम अपने उद्धार से वंचित हो गए या हमें उद्धार प्राप्त ही नहीं था? यूहन्ना कहता है, जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, हम अपने उद्धार से वंचित नहीं होते हैं। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, हमारे आश्वासन की कमी से बड़ा है। वह हमारी प्रार्थना सुनेगा। वह एक अद्भुत परमेश्वर नहीं है क्या? हम उसे निराश कर सकते हैं, परंतु वह हमें निराश नहीं करता है, देखना नहीं चाहता है। उसके समक्ष आने में आपको ढाढ़स नहीं हो सकता है। अधिकांश विश्वासी उसके समक्ष खाली हाथ आते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमने तो कुछ भी नहीं किया है, परंतु मैं फिर भी प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आपके मन से बड़ा है, वह आपकी प्रार्थना सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर देगा। जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। आप उस पर निर्भर कर सकते हैं। यद्यपि आपके मन में आश्वासन नहीं है, आप उससे प्रार्थना करते रहें। मेरे मित्रों, परमेश्वर यही चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, क्योंकि उसके निकटता में आने से आपको बल मिलता है। मैंने एक शराब के व्यवसायी का उल्लेख किया था कि वह आश्वासन से वंचित था। मैंने उससे कहा, आप जिस प्रकार मुझसे बात करते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको मुक्ति दिलाएगा। जी हाँ, आपको आश्वासन नहीं मिलता क्योंकि आपने परमेश्वर को निराश किया है, परंतु वह आपके मन से बड़ा है। वह जानता है कि आप में सच्चाई है। आप उस पर निर्भर कर सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर सकते हैं। वह आपकी सहायता अवश्य करेगा। पहला योहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। मेरे मित्रों, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। जी हाँ, जब मैं युवा प्रचारक था तब एक प्रचारक की प्रार्थना सदैव सुनना चाहता था। वह पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करता था। मैं उसकी प्रार्थना सूची पर होना चाहता था। उसके प्रार्थना करते समय मेरे विचार में परमेश्वर सब काम छोड़कर उसकी प्रार्थना सुनता होगा और कहता होगा कि वह जानता है वह क्या कह रहा है। मैं अपने पुत्र की आवाज सुनूंगा। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। वह दिन मेरे लिए एक महान दिन था। जी हां, प्रार्थना में विश्वास होना अति महान है। यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। पहला योहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 22 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। मेरे मित्रों, कर्मों से प्रकट प्रेम प्रार्थना में विश्वास उत्पन्न करता है। आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करे तो आप उससे आपकी प्रार्थना के उत्तर की आशा कर सकते हैं। आज इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। स्मरण करें कि शिष्यों को प्रभु यीशु का नाम न लेने की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने अन्य विश्वासियों के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने सताव से मुक्ति की प्रार्थना नहीं की थी। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 24 पद में उनकी प्रार्थना व्यक्त है। लिखा है, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। आज अधिकांश कलीसियाओं में ऐसी प्रार्थना की कमी है। विश्वासियों को विश्वास नहीं है कि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है और इस जगत का संचालन करता है। योहन्ना कहता है, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना किस प्रकार की प्रार्थना है? क्या जो कुछ आप मांगते हैं आपको मिलता है? क्या आप उस परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं? आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है? एक विश्वासी का जीवन, या यूं ही आप अपने जीवन को बिता रहे हैं? योहन्ना कहता है कि हम प्रार्थना में मांगते हैं और परमेश्वर उसे देता है, हमें हियाव मिलता है। पहला योहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में आगे लिखा है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। दूसरे शब्दों में योहन्ना कहता है, यह ना कहो कि उसमें विश्वास करते हो जबकि आपस में प्रेम नहीं रखते। एक ओर तो आप कहते हैं कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं इससे या उससे आप घृणा करते हैं। यूहन्ना द्वारा व्यक्त यह प्रेम आपके शब्दों और दिखावे का नहीं कि आपने किसी के गले में हाथ डाला। आपका प्रेम आपका जीवन प्रदर्शन करता है। वह किसी के लिए सच्ची चिंता है। आप किसी के विषय व्यर्थ बात नहीं करेंगे। इसकी आज घोर आवश्यकता है। जी हां, मसीही जीवन का सारांश है। हम परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, एक दूसरे से प्रेम करें जैसे उसकी आज्ञा है। दुख की बात तो यही है कि आज हम मुख से बोलते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते। हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और वह आज्ञा है प्रेम करने की, ताकि हम एक दूसरे के बीच परमेश्वर के प्रेम को बांटने पाएं। पहला योहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। आइए हम पढ़ते हैं। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। मेरे मित्रों, यदि हम पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करते तो वह इन बातों को हमारे मन में सत्यापित करता है। उसकी आज्ञा न मानने पर पवित्र आत्मा दुखी होता है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम ऐसा न करें तो पवित्र आत्मा को दुख होता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया गया है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की संतान की पहचान है कि उसमें पवित्र आत्मा वास करता है, और वह इन बातों को उसके मन में सत्यापित करके वास्तविक बनाता है। यदि उसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है तो निश्चय ही उसके जीवन से उसके व्यवहार से आप उसे पहचान लेंगे कि वह किसका संतान है। आज बहुत से विश्वासी अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वे संसार की उन सुख सुविधाओं में मग्न हैं, अपना जीवन उसी में बिता रहे हैं, परंतु प्रेम से बहुत दूर हैं। मेरे श्रोता मित्रों, आज परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उससे प्रेम करें, अपने विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करें, ताकि प्रत्येक की संगति आपको मिले और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने पाए। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है और आत्मिक आशीषें पाई है। प्रभु आप सबके साथ में हो ताकि आप निरंतर उसकी संगति में बढ़ते रहें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
कदम डगमगाए, हाथ वो थामेगा।